पृष्ठ संख्या एक। इतिहास में काल विभाजन किसी देश, क्षेत्र अथवा पूरे संसार के इतिहास का अध्ययन सामान्यतः उसे अलग-अलग कालों और उपकालों में विभाजित करके किया जाता है। इस विभाजन के कुछ विशिष्ट मानदंड होते हैं। पारंपरिक इतिहास लेखन में आमतौर पर प्रयुक्त एक मानदंड यह है कि देश विशेष के इतिहास को उस पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के काल के अनुसार बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए, इस मानदंड के आधार पर किए गए काल विभाजन के अनुसार हम भारतीय इतिहास के किसी दौर को मौर्य काल तो किसी को गुप्त काल या मुगल काल कहते हैं। इसी तरह चीन के इतिहास के संदर्भ में हम हान या मांचू काल का प्रयोग करते हैं और इंग्लैंड के इतिहास के किसी दौर को ट्यूडर काल तो किसी को स्टुअर्ट काल कहते हैं। इसी तरह का काल विभाजन आज भी काफी प्रचलित है क्योंकि इससे किसी राजवंश के शासन काल के रूप में अध्ययन के लिए एक सुविधाजनक क्रमबद्ध काल उपलब्ध हो जाता है। लेकिन काल विभाजन के कुछ दूसरे मानदंड भी हैं। उदाहरण के लिए, इतिहास को पुनर्जागरण काल और औद्योगिक क्रांति काल जैसे कालखंडों में भी बांटा गया है। इनमें कुछ देशों के इतिहास के सामान्यतः क्रमबद्ध कालों का बोध होता है। इस मामले में जिन मानदंडों का प्रयोग किया गया है, उनका संबंध सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन के कुछ एक क्षेत्रों में आने वाले महत्वपूर्ण बदलावों से है। राजवंशों के कालों के आधार पर किए गए विभाजनों की तरह, ऐसे विभाजनों से किसी सर्वथा निश्चित काल का बोध नहीं होता, क्योंकि संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था में आने वाले परिवर्तनों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि यह परिवर्तन आमुक तिथि को प्रारंभ हुई और आमुक तिथि को पूर्ण हो गई। इसलिए ऐसे मानदंडों के अनुसार किए गए काल विभाजन में काल का एक मोटा संकेत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारतीय इतिहास में राष्ट्रवाद के दौर को ले, राष्ट्रवाद के उदय को किसी खास दिन या किसी खास घटना से नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए राष्ट्रवाद के उदय की निश्चित तिथि का संकेत किया जा सकता है, बल्कि उसके संबंध में एक मोटे काल का ही निर्देश किया जा सकता है। एक अन्य मानदंड के अनुसार इतिहास को सदियों में विभाजित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं, इंग्लैंड का 15वीं या 17वीं अथवा किसी भी अन्य सदी का इतिहास। लेकिन काल विभाजन का जो इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण और स्वीकृत मानदंड है, उसके अनुसार इतिहास को मानव जाति के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अलग-अलग कालों में बांट दिया जाता है। इस आधार पर किए गए विभाजन में हर काल न केवल इतिहास के एक मोटे दौर का सूचक होता है, बल्कि उससे एक विशिष्ट प्रकार के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली और संस्कृति का भी बोध होता है। जीवन के इन सभी क्षेत्रों में इस काल का अपना एक सुपरिभाषित रूप होता है, जिसके आधार पर उसे अन्य कालों से अलग में पहचाना जा सकता है। इस आधार पर अधिकांश देशों तथा पूरे विश्व के इतिहास का जो सबसे व्यापक और सामान्यतः सर्वस्वीकृत विभाजन किया गया है, उसके अनुसार यह तीन कालों में बटा हुआ है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ये काल अलग-अलग देशों पर अलग-अलग दौरों में लागू होते हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में समाज एक दूसरी अवस्था में अलग-अलग समय में पहुंचा। उदाहरण के लिए, पश्चिमी यूरोप में प्राचीन काल ईसवी सन की आरंभिक सदियों के दौरान समाप्त हुआ और मध्यकाल तब आरंभ हुआ जब समाज की व्यवस्था एक नया रूप ग्रहण करने लगी। इसकी विशेषता सामंतवाद का विकास थी। इसी प्रकार कहा जा सकता है कि पश्चिमी यूरोप के इतिहास में मध्यकाल का अंत 15वीं 17वीं सदियों के दौरान हुआ और आधुनिक काल सामंतवाद के पतन तथा पूंजीवाद नामक नई समाज व्यवस्था के उदय के साथ आरंभ हुआ। पर दूसरे देशों या क्षेत्रों में जैसे एशिया या अफ्रीका में एक प्रकार की समाज व्यवस्था की समाप्ति और दूसरे प्रकार की व्यवस्था का उदय यूरोप के साथ नहीं बल्कि उससे अलग-अलग समयों में हुआ। इसलिए अलग-अलग देशों और क्षेत्रों के प्राचीन और मध्य और आधुनिक काल के तिथिक्रम अलग-अलग हैं। यह भी याद रखना चाहिए कि सभी देशों के इतिहास के प्राचीन या मध्यकाल की विशेषताएं एक जैसी नहीं है। उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन तथा राजनीतिक प्रणालियों एवं संस्कृति की अनेक तात्विक विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न है। उदाहरण के लिए मध्यकालीन चीन या मध्यकालीन भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली आदि वैसे ही नहीं थे जैसे कि मध्यकालीन यूरोप के थे। लेकिन जब पूरे विश्व के इतिहास का काल विभाजन किया जाता है, तब उसके अलग-अलग हिस्सों में दिखाई देने वाली भिन्नताओं को सुविधा की खातिर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और समाज तथा अर्थव्यवस्था के नए रूप, चाहे दुनिया के एक ही क्षेत्र में क्यों न प्रकट हुए हों, उन्हें नए काल की शुरुआत मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए 15वीं से 17वीं सदी तक के काल को, जब पश्चिमी यूरोप में आधुनिक काल का आरंभ हुआ, पूरे विश्व के इतिहास के संदर्भ में आधुनिक काल की शुरुआत का दौर माना जाता है। ऐसा मानने का कारण यह है कि इन सदियों के दौरान पश्चिमी यूरोप में जो प्रवृत्तियां उभरी, उनमें से कुछ एक आगे चलकर विश्व के दूसरे हिस्सों के कई अन्य देशों और क्षेत्रों की भी या तो मुख्य विशेषताएं बन गई या उन्होंने उनके इतिहास को प्रबल रूप से प्रभावित किया।